जयो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वांझाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 16 सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासना वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। सारथ्य सारथी के पद की स्वीकृति, पार्षद राजसूय यज्ञ की सभा में प्रधान पद की स्वीकृति, सेवन भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना, सख्य भगवान को मित्र रूप में सोचना, दौत्य दूत पद को स्वीकारना, वीरासन रात्रि में हाथ में तलवार लिए, रखवाले के पद की स्वीकृति, अनुगमन चरण चिन्हों पर चलना, स्तवन, प्रार्थना करना, प्रणामान, प्रणाम करते हुए, स्निग्धेशु, जो लोग भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र हैं, उनको विनीत, पांडुषु, पांडवों में, जगत, विश्व, प्रणीतिम, जिसकी आज्ञा का पालन किया जाए उसको, च तथा विष्णु, विष्णु की भक्तिम, भक्ति, करोति, करता है, नृपति, राजा, चरणारविंदे, भगवान के चरण कमलों पर। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का सारा जगत पालन करता है, उन्होंने अपनी अहैतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनको इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनते मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है थे। इस प्रकार भगवान ने पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य प्रतिदान का महत्व समझ सकते थे और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ कर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें ठीक से समझता है वह भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। पांडवगण भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप से भगवान की कृपा के भाजन बन सकते थे। इस अध्याय का शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। महाराज परीक्षित, जिन्हें ये नाम मिला परीक्षित, क्योंकि पैदा होते ही वो सभी पुरुषों की परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा में वो क्या खोज रहे थे, किस प्रकार का परीक्षण वो ले रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण, जिनका दर्शन उन्होंने अपनी माता के गर्भ में किया था, वो व्यक्ति कहां है, वो परम पुरुष कहां है। और हालांकि परीक्षित ये नाम यदि हम इसका विश्लेषण कर देखें तो ये भगवान से संबंधित नहीं है। ये नाम ऐसा नहीं कि भगवान के किसी गुणों को दर्शा रहा है ये नाम, या भगवान का कोई नाम है, या भगवान की लीला के संदर्भ में है। केवल किसी व्यक्ति ने परीक्षण किया और इस व्यक्ति को नाम मिला परीक्षित। तो परीक्षित महाराज वो अपने नाम से और अपने कार्यों से, उन्होंने जो कार्य किए उसके अनुसार उनको नाम मिला। हमारे संदर्भ में हम देखते हैं कि पहले नाम दिया जाता है और फिर पता नहीं उस नाम के अनुसार कार्य होते भी हैं कि नहीं। प्रभु जी का नाम है धनंजय। धनंजय का अर्थ क्या है? जो धन संग्रह करे। हालांकि अर्जुन ने ये किया था, अर्जुन का नाम है धनंजय, कि अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के लिए जब वो धन एकत्रित करने गए थे तो उन्हें ये नाम मिला धनंजय। तो हालांकि ये अर्जुन के संदर्भ में नाम है कि धन एकत्रित किया उन्होंने किस लिए, ताकि महाराज परीक्षित भगवान का गुणगान कर सके उस धन एकत्रित धन को इस्तेमाल करके। हमारे धनंजय प्रभु भी अर्जुन के ही पदचिन्हों पर चल रहे हैं कि वो धन एकत्रित कर रहे हैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए। और इनकी दृष्टिकोण या हमारे दृष्टिकोण से हम यदि देखें इनको, तो ये जो कार्य कर रहे हैं और जो इनका नाम है वो सही है। परंतु अधिकांश देखा जाता है कि जो नाम होता है वैसे कार्य नहीं होते ज्यादातर। परंतु परीक्षित महाराज, इन्हें ये नाम मिला क्योंकि ये पैदा होते ही परीक्षा कर रहे थे सबकी। अब देखिए, छोटा सा बालक, उसे कौन सी बुद्धि होती है, कौन सी शक्ति होती है कि वो इस प्रकार का कार्य करे। यहां तक कि बड़ा होने के बाद भी कोई नहीं कर पा रहा कि एक छोटा सा बालक जो असहाय अवस्था में, कैसे संभव है? भगवान की ही कृपा इनके ऊपर थी जिसके कारण ये भगवान को खोज रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने जब कृष्णा पुस्तक लिखा तो जॉर्ज हैरिसन को कहा फॉरवर्ड लिखने के लिए, और जॉर्ज हैरिसन उसमें लिखते हैं, एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्ण, सम नो सम डू नॉट नो। सभी भगवान श्री कृष्ण की ही खोज में हैं, तो एक दृष्टिकोण से सभी परीक्षित हैं, परंतु कोई जानता है कोई नहीं जानता, यही अंतर। और जो जानते हैं वो बहुत कम, और जो नहीं जानते वो बहुत अधिक मात्रा में है। तो परीक्षित महाराज, इन्होंने भगवान को खोजने का परीक्षण केवल ऐसे ही नहीं कि भगवान कहां है कहां है कहां है, जैसे कि यहां पर उन्होंने कलयुग का भी परीक्षण किया। इस अध्याय में महाराज परीक्षित कलयुग का परीक्षण कर रहे हैं, और कलयुग का परीक्षण करने के बाद वो कलयुग को दंडित भी कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि कलयुग धर्म का आचरण नहीं कर रहा तो दंडित किया महाराज परीक्षित ने। हालांकि इस अध्याय का शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किया, परंतु यदि इस प्रसंग को आप पढ़ोगे तो परीक्षित महाराज ने दंडित किया मूर्तिमान कलि को। तो परीक्षित महाराज जो कि एक आदर्श राजा, वो हमें सिखा रहे हैं कि भगवान को खोजने का परीक्षण किन किन प्रकार से होना चाहिए। कि भगवान का दर्शन तो परीक्षित महाराज ले लिए थे, और क्योंकि वो पांडवों के वंशज, तो पांडवों के वंशज होने के कारण भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो होलसेल के भाव पर उन्हें मिल रही थी, यदि हम उसे कहें तो। परंतु महाराज परीक्षित यहां बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार एक और तरीके से भी करना चाहिए, कि हम भगवान की प्रकृति का परीक्षण कर प्रकृति को कैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है ये भी सीखें। इसलिए श्रीमद् भागवत में, हालांकि जो अमल पुराण है, कई प्रसंग आप पढ़ोगे जब भौतिक प्रकृति को बहुत विस्तार से बताया गया है। तीसरे स्कंद में कपिल मुनि बहुत विस्तार से इस भौतिक प्रकृति के विषय में बताते हैं, पांचवें स्कंद में बहुत विस्तार से भौतिक प्रकृति के विषय में बताया है, दूसरे स्कंद में, ग्यारहवें स्कंद में जब अवधूत ब्राह्मण, उन्हें जब पूछा गया, महाराज यदु ने पूछा कि आपके अंदर ये साक्षात्कार कैसे आया, भगवत साक्षात्कार, तो बताते हैं क्योंकि मैंने परीक्षण किया और 24 गुरु लिए इस भौतिक प्रकृति से। तो भौतिक प्रकृति का परीक्षण होना चाहिए। जो आजकल के वैज्ञानिक हैं वो क्या कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति का परीक्षण कर रहे हैं, जिसे वो रिसर्च कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। चल प्रभुपाद इस शब्द पर हंसा करते थे, रिसर्च। प्रभुपाद कहा करते थे, अरे पहले से ही वैदिक ग्रंथों ने सब कुछ सर्च कर दे दिया है, फिर ये रिसर्च कर बताना, ये कौन बुद्धिमानी की बात है। श्रील प्रभुपाद ये उनका प्रसिद्ध उदाहरण दिया करते थे कि यदि मैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के सामने जाकर कहूं कि मैंने आज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को खोज निकाला आप लोग सबके लिए, तो लोग हंसेंगे। तो वैसे ही भगवान और भगवान के पार्षद और भगवान के ग्रंथ, उन्होंने इस पूरी सृष्टि का विवेचन कर हमें बता दिया है कि सृष्टि में कौन सा तत्व कहां पर है, कितने तत्व हैं, कैसे सृष्टि कार्यरत है, और यहां तक कि हम कैसे बद्ध हैं, यहां तक कि हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, हमारी दशा क्या है, ये सब कुछ वैदिक ग्रंथों में भगवान ने बता दिया। तो वैज्ञानिक अब बताते हैं कि हमने एक नई योनि खोज कर निकाली है समुद्र के सतह पर, कि एक ऐसी नई योनि जो आज तक विज्ञान में किसी ने नहीं सुनी और देखी। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि एक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इन वैज्ञानिकों को भगवान ने ही नियुक्त किया है कलयुग में। किस लिए? आप लोग आश्चर्य करेंगे कि भगवान ने इनको नियुक्त किया है, ये तो नास्तिकवाद फैला रहे हैं। भगवान ने इनको नियुक्त किया ये कहते हुए कि सर्वसाधारण जनता वो मेरी सृष्टि को नहीं पूरा देख पाएगी, तो तुम लोग जाओ और खोज कर मेरी सृष्टि के बारे में सर्वसाधारण जनता को बताओ। तो ये साइंटिस्ट, ये जो वैज्ञानिक हैं, ये एक दृष्टिकोण से भगवान की ही सृष्टि के अंदर क्या क्या ऐश्वर्य है और क्या क्या विभूतियां हैं भगवान ने कह दिया यद यद विभूति मत सत्वम, कि जो भी विभूतियां इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति देखता है, हमारे विभूते जी ये भी एक विभूति है भगवान की, तो भगवान ने कहा 11वें अध्याय में यद यद विभूति मत सत्वम, कि जितनी भी सारी विभूतियां हैं वो भगवान से ही उत्सृत हुई हैं, और भगवान तो कहते हैं केवल ये सारी विभूतियां अंश मात्र हैं मेरे, तो हम इन विभूतियों के संपर्क में कैसे आ सकते हैं यदि कोई व्यक्ति जो नियुक्त किया गया है भगवान के द्वारा, वो जब हमें भगवान की विभूतियों के बारे में बताए, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, और पूरे श्रीमद् भागवत में भगवान का ही गुणगान हुआ है। श्रीमद् भागवत का अर्थ है, भागवत है भगवान श्री कृष्ण, और श्रीमद् का अर्थ है श्री या ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य को लाए या ऐश्वर्य को धारण किए हैं, और श्रीमद् है श्रीमती राधा रानी का एक नाम भी, तो श्रीमद् भागवत का अर्थ है राधा कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, श्रीमद् भागवत। तो हरे कृष्ण या राधा कृष्ण, इसका अर्थ क्या है? भगवान और भगवान की शक्ति। श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति हैं और भगवान शक्तिमान। जैसे कि इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि कैसे जो शक्तिमान हैं वो अपने शक्ति के अधीन आते हैं, और शक्ति के अधीन आकर वो एक सेवक की भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये भूमिका शब्द ठीक नहीं रहेगा, भगवान सेवक की भूमिका नहीं निभाते, भूमिका ये शब्द का अर्थ है रोल, अंग्रेजी में कहते प्लेइंग अ रोल, किसी नाटक में कोई भूमिका निभा रहा है, हीरो की या डॉक्टर की, इंजीनियर की भूमिका निभाता है, वो है नहीं डॉक्टर इंजीनियर परंतु भूमिका निभाता है। तो भगवान अपने भक्तों के सेवक की भूमिका नहीं निभाते, वो वास्तविक रूप में अपने भक्तों के सेवक बनते हैं, और ये भी कहना अनुचित रहेगा कि वो सेवक बनते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि कुछ समय पहले नहीं थे और अब शायद बने हैं। तो जैसे जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है कि वो अपने भक्त के नित्य दास बनते हैं। ये दोनों में होड़ लगती है, भगवान के भक्त में और भगवान में, कि कौन किसका सेवक बनेगा। अब यहां पर इस सुंदर श्लोक में बताया गया है कि भगवान ने कौन कौन सी सेवाएं ली अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को प्रसन्न करने के लिए। भगवान जब अपने भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान स्वयं अपने आप में प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्रसन्नता है जो भगवान अपनी भगवत्ता दिखाकर नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए वो अपने भक्तों का सेवक बनकर इस प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, और इसमें भी वो परम भोक्ता हो गए, क्योंकि इसमें भी एक प्रसन्नता है, सेवा करने की एक प्रसन्नता है। और भोक्ता कौन होता है? जो प्रसन्नता ढूंढ रहा है। तो भगवान परम भोक्ता हैं, सुप्रीम एंजॉयर इस दृष्टिकोण से भी हैं कि ये जो एंजॉयमेंट है सेवा का, उसे भी वो छोड़े नहीं है।
तो ये विरोधाभास लगेगा कि सुप्रीम एंजॉयर किसी का सेवक कैसे बन सकता है, परंतु इसमें कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि इसमें भी एक प्रकार का आनंद है सेवा में, और वो आनंद को क्यों सुप्रीम एंजॉयर छोड़े, यदि वो सुप्रीम एंजॉयर है तो, यदि वो सुप्रीम एंजॉयर है तो यदि उनसे कोई जाकर पूछे आपका लिस्ट निकालो एंजॉयमेंट का, तो अपना लिस्ट निकालें यदि एंजॉयमेंट का, और उसमें यदि कोई कहे सेवा का आनंद नहीं है आपके पास, सेवानंद नहीं है आपके पास, तो फिर भगवान उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबका मुंह बंद करने के लिए कि कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सके कि उनका ये जो पद है सुप्रीम एंजॉयर का, वो पद को वो ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे, इसलिए वो अपने भक्तों का सेवक बनकर और उसमें जो आनंद उन्हें मिलता है वो आनंद उन्हें और किसी कार्य में नहीं मिलता। इसलिए दशम स्कंद में स्वयं भगवान अपने मुख से कहे हैं, जब वो मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तो मथुरा की स्त्रियां वो छज्जे पर चढ़ चढ़कर, छत पर चढ़ चढ़कर भगवान का दर्शन ले रही थी, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो साधारण सी स्त्रियां दिखती हैं जो मेरा दर्शन इतना उत्सुकता से ले रही हैं, और जो वृंदावन की गोपियां हैं जो मुझे बहुत बार डांट दिया करती थी, तो इनकी जो डांट फटकार है वो मुझे वैदिक स्तुतियों से भी ज्यादा मधुकर लगती है, वैदिक स्तुतियों से भी ज्यादा मधुकर। अब वैदिक स्तुति, इनके विषय में बताया गया है कि वैदिक स्तुतियां ऐसी हैं कि यदि वैदिक स्तुतियों का कोई एक वाक्य, कोई एक शब्द, कोई एक अक्षर भी उच्चारण कर ले तो उसके जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो यदि वैदिक स्तुतियों के अंदर इतनी मधुरता है कि विष जैसे हमारे पापों को वैदिक स्तुतियां धो के साफ कर सकती हैं, परंतु भगवान को इससे भी ज्यादा मधुकर गोपियों की गालियां लगती हैं। और ये हम हमारी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए वो भगवान है, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो हमारी भौतिक बुद्धि के परे होता है। तो हमारी भौतिक बुद्धि कैसे समझ पाएगी कि वैदिक स्तुतियों से ज्यादा मधुकर भगवान को गोपियों की गालियां लगती, नहीं समझ पाएंगे हम। हमें यदि कोई गाली भी ना दे तो भी कई बार हम किसी व्यक्ति के साथ संग नहीं करना चाहते, बिना कारण, कई बार बिना कारण किसी व्यक्ति के साथ द्वेष उत्पन्न हो जाता है या वो भाता नहीं हमें, परंतु यदि कोई व्यक्ति गालियां देना शुरू करे तो कौन है इस भौतिक संसार में जो जिससे गालियां सुन रहा है वो कहे कि इससे ज्यादा मधुकर और कोई शब्द मुझे नहीं लगे आज तक। अब यदि भगवान स्वयं गोपियों की गालियों को सबसे मधुर कह रहे हैं, सबसे मधुर वस्तु कह रहे हैं, तो हम भक्तों को क्या सीखना है कि जब हम भक्तों के संग में रहते हैं और जब कोई भक्त हमें कुछ कह दे, और कई बार तो हमें क्या कहा जाता है, ऐसा नहीं कि बिठाकर रोज गाली का सेशन होता है। यहां पर भगवान गाली का सेशन उसकी प्रतीक्षा में है, कब गोपियां गालियां देंगी मुझे। और वो ऐसे काम करते हैं, ऐसे अपनी कार्य करते हैं ताकि गोपियां गाली दे। और हम इतना प्रयास करते हैं ताकि हमें कोई गाली न दे, कोई अपशब्द न कहे, मेरा इमेज बना रहे। हम हमारे इमेज के पीछे बहुत चिंतित रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। यदि मैंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, यदि मैं ठीक से नहीं किसी से बात कर रहा, यदि मैं ठीक से अपने गुणों को नहीं दर्शा रहा, तो लोग क्या सोचेंगे। परंतु भगवान ये लोग क्या सोचेंगे इसके विषय में कभी नहीं सोचते। तो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि कई बार जब भक्तों के मुख से हम कुछ करेक्टिव क्रिटिसिज्म सुनते हैं, उसे हम गाली नहीं कहेंगे, कि हमारे सुधार हेतु निंदाएं, जिसको हिंदी में अनुवाद करें तो सुधार हेतु निंदाएं, तो सुधार हेतु निंदाएं भी जब होती हैं तो भी बहुत कर्कश हमें लगती हैं वो निंदाएं। जब में नींद आ रही है और कोई जगा रहा है, गलती हमारी है और वो दूसरा व्यक्ति, दूसरा भक्त जो है वो हमें भगवान के नाम में जागरूक रहने के लिए सहायता कर रहा है। अब सोचिए उस व्यक्ति से बड़ा हित चित्तक कौन हो सकता है हमारा, कि जो हमें तमोगुण से बाहर निकाले, और वो भी उस समय जब भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। कि जो हमें नींद से जगा रहा है वो व्यक्ति हमें तमोगुण से उठाकर भगवान के संपर्क में ला रहा है, तो उससे बड़ा हित चिंतक और क्या होना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति हमें नींद से जगाए श्रवण कीर्तन के समय, तो उस व्यक्ति को दंडवत हमें देना चाहिए, उस व्यक्ति का गुणगान करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि आप जैसा हित चिंतक और कोई नहीं। परंतु हमें लगता है कि ऐसे नजरों से हम देखते हैं फिर, कि तुम्हें क्या लगता है मैं जप नहीं कर रहा, तुम्हें क्या लगता है मैं ही सोता हूं और तुम जगे रहते हो। और फिर हम प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये सोए तो हम इसका हितचिंतक बने, इसे भगवान के संपर्क में तमोगुण से उबार कर इसे भगवान के संपर्क में कैसे लाएं। तो भगवान यहां पर सेवक बनकर हमें बता रहे हैं। हालांकि हमें सीख लेना चाहिए, भगवान हमें बताने के लिए सेवक नहीं बने। कई बार हम सेवा करते हैं दूसरों को कुछ बताने के लिए, देखो कैसे मैं सेवा कर रहा हूं वैसे तुम भी करो। परंतु भगवान हमें बताने के लिए नहीं सेवा करते अपने भक्तों की। यहां पर कौन कौन सी सेवाएं भगवान ने अपने भक्तों की, विशेष रूप से पांडवों की, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि परीक्षित महाराज जिन्हें तक्षक आकर 7 दिन पश्चात डसने वाला था, तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि चिंता मत करो परीक्षित, क्योंकि तुम जान लो तुम किसके वंशज हो, तुम इन पांडवों के वंशज हो जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपना अधिकांश समय बिताया, और वो भी समय कैसे बिताया, जा जाकर इनकी सेवा करकर। युधिष्ठिर महाराज वो जब राज्य कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज के समय किसी भी जंगल में किसी भी गुफा में कोई भी ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर रहा था। तो आप लोगों को लग रहा होगा वो तो राज ऋषि थे, राज ऋषि मतलब कि सभी ऋषि मुनि सब तपस्या में भगवान की भक्ति में योग साधना में लगे होने चाहिए, कोई नहीं लगा था, सारे वन खाली, सारे वन रिक्त हो गए थे इन सब ऋषि मुनियों से, किसी भी वन में कोई भी प्रकार का साधु नहीं दिखता। यदि कोई पहले के जमाने में लोग सत्संग करने के लिए वन में जाया करते थे, आजकल शहर में आना पड़ता है। तो महाराज युधिष्ठिर के समय भी कोई भी वन में नहीं जा रहा था सत्संग करने के लिए, क्योंकि सारे ऋषि मुनि वो अपनी तपस्या और योग साधना के द्वारा उन्होंने देखा कि उनके आराध्य देव है कहां, युधिष्ठिर महाराज के महल में हस्तिनापुर में। तो उन्होंने सोचा कि यदि हमारे आराध्य देव इस जंगल में है ही नहीं तो वो जहां पर हैं वहां पर हमारी साधना है। तो ये सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े विरक्त ये दौड़ दौड़ कर हस्तिनापुर के राज्य में आ रहे थे, क्योंकि वहां पर उनके प्राणेश्वर आराध्य देव थे। और इसलिए महाराज युधिष्ठिर वो भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते रहते थे कि आप यहां पर हैं इसलिए मुझे घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहा है, कहीं पर संडे फीस्ट अटेंड करने जाने की जरूरत नहीं है, दिन प्रतिदिन सत्संग का फीस्ट यहीं पर मुझे मिल रहा है। तो यही बात सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो कि क्या होगा तुम्हारे साथ। हालांकि वो चिंता नहीं कर रहे थे, क्योंकि महाराज परीक्षित ये जान लिए थे कि मैं सुखदेव गोस्वामी के अंडर हूं, तो अब चाहे तक्षक आए या तक्षक का बाप आए या तक्षक का दादा आए, क्या वो बिगाड़ लेगा मेरा। तो यहां सुखदेव गोस्वामी वो बताते हैं कि भगवान क्या क्या बने पांडवों का, सारथी, पार्षद, सेवक, सख्य, दौत्य, वीरासन अनुगमन। इसका अर्थ है वीरासन ये एक योगिक आसन है, वीरासन वो इस प्रकार का आसन है, अभी तो मैं यहां पर व्यासासन पर नहीं दिखा सकता, परंतु वीरासन में व्यक्ति अपने एड़ियों पर बैठता है, पैर की एड़ी होती है ना, एड़ियों पर बैठता है, अंग्रेजी में जिसे स्क्वैटिंग पोजीशन बोलते हैं, वो दंड बैठक करते हैं ऊपर नीचे नहीं, उसे क्या बोलते हैं, उठक बैठक। तो वो जो बैठक का पोजीशन होता है उसी प्रकार का वीरासन होता है, और इस वीरासन को व्यक्ति कब लेता है इस प्रकार के आसन को, जब वो किसी की निगरानी कर रहा हो तब वो वीरासन में बैठता है, क्योंकि वीरासन में कभी नींद नहीं आ सकती। इसलिए यदि किसी को श्रवण कीर्तन में नींद आए तो वीरासन में बैठ जाना चाहिए। तो वीरासन में नींद नहीं आ सकती, वो आजकल की भाषा में यदि उसे कहें तो वॉचमैन का आसन है, कि जो भी वॉचमैन यदि हो तो उसे वीरासन में होना चाहिए। कि वीरासन में एक तो नींद नहीं आती, और वीरासन ये ऐसा आसन है कि जिसमें व्यक्ति यदि किसी पर प्रहार करने जाए तो एकदम चुस्ती से प्रहार कर सकता है। तो किसी के ऊपर छलांग लगाकर प्रहार यदि करना हो तो वो वीरासन में सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकेगा। तो भगवान सारे आसनों को छोड़कर, सिंहासनों को, व्यासासनों को, बड़े बड़े आसनों को छोड़कर भगवान वीरासन में एक वॉचमैन के आसन में रहकर निगरानी, रखवाली पांडवों की किया करते थे। और इसके विषय में भागवत में एक और जगह पर बताया गया है कि बलि महाराज ने जब अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया वामन देव को, तो वामन देव वो वॉचमैन बने बलि महाराज के राजमहल के, सुतल, सुतल लोक में बलि महाराज का जो महल था उस महल के वॉचमैन वामन देव बने। और जब वॉचमैन बने, रखवाले बने, तो लक्ष्मी देवी आ गई। लक्ष्मी देवी आ गई और वो प्रार्थना कर रही बलि महाराज से। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये कि लक्ष्मी देवी क्या प्रार्थना कर रही। लक्ष्मी देवी प्रार्थना करती है कि हे बलि, एक तो मेरे पति को आपने ले लिया, वो तो ठीक है कि मेरे पति अब यहां पर आ गए हैं, और वो भी जो लक्ष्मी के पति हैं वो वॉचमैन बने। कई बार इस भौतिक संसार में भी जो वॉचमैन होते हैं उनके नाम होते हैं लक्ष्मीपति, अर्थात ये नहीं कि वो वामन देव के आवेश में हैं और बलि महाराज की रखवाली कर रहे हैं। तो लक्ष्मी देवी वो कहती हैं, एक तो मेरे पति को आपने छीन लिया है आपकी भक्ति के कारण, कि आपने इतनी भक्ति दिखाई है, सर्वस्व अर्पित कर दिया है कि मेरे पति वो आपके सेवक बन गए। और इतना ही नहीं, वो ऐसी रखवाली कर रहे हैं कि कोई वॉचमैन भी यदि होता है तो शिफ्ट पे काम करता है, परंतु ये 24 घंटे शिफ्ट पर हैं। और एक राजा के राजमहल की रखवाली करने के लिए कितने सारे सेवक हो सकते हैं, परंतु ये व्यक्तिगत रूप से ये सेवा में लगे हुए हैं रखवाली की। तो लक्ष्मी देवी ने कहा, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, मुझे केवल इतनी ही शिकायत है कि हे बलि, आप जब अपने राजमहल से बाहर निकलो तो किसी एक दरवाजे से बाहर निकलो, डिसाइड करो कि कौन से दरवाजे से आप बाहर निकलोगे। क्योंकि हुआ क्या करता था कि बहुत सारे दरवाजे थे राजमहल के बलि महाराज के, और बलि महाराज कभी किसी भी दरवाजे से बाहर निकल जाते तो वामन देव जैसे ही बलि महाराज अब किसी दूसरे दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं जहां पर वो खड़े नहीं रखवाली करते हुए, तो वामन देव भागते हुए पहले बलि महाराज के निकलने से पहले दरवाजे पर उपस्थित रहते। जैसे एक चौकीदार, मालिक निकलता है दरवाजे तो सलाम मारने के लिए खड़ा रहता है, तो बलि महाराज किसी भी दरवाजे से बाहर निकलते तो वामन देव को भागना पड़ता। और ऐसा नहीं कि बलि महाराज का राजमहल छोटा सा था कि वामन देव यहां से उस दरवाजे तक तुरंत पहुंच जाते, बहुत बड़ा राजमहल था और बहुत दूर दूर दरवाजे थे। तो लक्ष्मी देवी वो वैकुंठ से आकर यही बोल रही है कि केवल यही प्रार्थना है कि डिसाइड कर लो कौन से दरवाजे से बाहर निकलो, मैं देख नहीं सकती कि इतना भागा दौड़ी मेरे पति को करनी पड़ रही। देखिए वामन देव का सेवा भाव। तो वीरासन, वीरासन में और स्निग्धेशु पांडुषु जगत प्रणीतम, जो कि स्निग्ध, स्निग्ध ये शब्द संस्कृत में आता है जिसका एक और अर्थ है माखन, माखन को भी स्निग्ध कहा जाता है। स्नेह, स्नेह भी उसी से उत्पन्न हुआ है। जैसे माखन एकदम मुलायम होता है, वैसे ही जब भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में ये स्निग्धता होती है, ये स्नेह का आदान प्रदान होता है, तो माखन के समान मुलायम। तो भगवान अब ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों और विशेष रूप से पांडवों की सेवा की, सारथी बनकर, सेवक बनकर, एक रखवाला बनकर, पोस्टमैन, पोस्टमैन का भी काम किया उन्होंने, वॉचमैन का काम, पोस्टमैन का काम, ड्राइवरी का काम, ये सारी ऐसी ऐसी सेवाएं भगवान ने ली। और भगवान बता रहे हैं कि यदि भगवान अपने भक्तों का सेवक भी बनते हैं तो कैसे निपुणता से सेवा करते हैं। तो भगवान इन सब सेवाओं के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि एक सेवक को सेवा चयन करने का अवसर नहीं अपने आप को देना चाहिए। जो भी सेवा मिले उस सेवा को दृढ़ता पूर्वक और एकाग्रता पूर्वक करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान ने पांडवों से कहा कि मैं केवल यही सेवा करूंगा। कौन सी सेवा? भगवद गीता सुनाने की सेवा। तो कई बार हमें लगता है कि मुझे ये सेवा बहुत अच्छी लगती है, दूसरों को प्रवचन देना, सेवा है ये भी, दूसरों को भाषण सुनाना, प्रवचन देना और प्रसाद सेवा भी मुझे अच्छी लगती है, वो भी एक सेवा मैं कर सकता हूं। तो हम सेवाओं का चयन करते हैं हमारे आराम या कंफर्ट को देखते हुए कि मुझे कौन सी सेवा आरामदायक लगती है। तो हम सेवा तो करते हैं और बोलते हैं प्रभु, आप प्रभु, मैं सेवक, परंतु हम कौन सी सेवा चुनते हैं जिसमें हमें आराम मिले और हमारे मता अनुसार वो सेवा हो। यदि कहा जाए कि कई बार देखा जाता है कि जब सब्जियां काटते हैं हम बैठकर, बम्बई में हम देखा करते थे कि यदि कोई ऐसी सब्जी है मिक्स्ड वेजिटेबल, फिस्ट के लिए बन रहा है मिक्स्ड वेजिटेबल, तो उसमें अलग अलग सब्जियां होती हैं, उसमें फली, फिर गाजर और फिर कद्दू और ये सब सब्जियां, तो उसमें से जो एकदम आराम से कट सके वो चुनते हैं हम, जिसमें ज्यादा परिश्रम न हो वो हम चुनते हैं। और हम अधिकांश देखते थे कि कि वो जो बड़ा भोपला आता था ना, उसे कोई छूता नहीं था, क्योंकि वो एक तो बाहर से इतना कड़क होता है और उसमें चाकू घुसाना इतना मुश्किल, और फिर उसको छीलो और बहुत समय उसके अंदर का सब माल बाहर निकालो, तो उसे ज्यादातर कोई लेता नहीं था। और ज्यादातर ये देखा जाता था कि जो एकदम आसानी से कटे वो सब्जियां तुरंत, और ऐसा लगता था कि कितना आतुर है सब्जी काटने में, ऐसी उत्सुकता कि सब्जी के चाकू आने से पहले काटना शुरू। परंतु उसमें अंदर ही अंदर हम जान लेते थे कि हम वो सेवा चुनना चाहते हैं जिसमें हमें आराम मिले, आराम से वो सेवा हो, और जो मेरे अनुसार कि मुझे जो अच्छी लगती हो वो सेवा। परंतु भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कि भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम मेरी शरण आओ, और फिर मेरी शरण में बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है सेवा करने का, उसमें से कोई चुन लो, कोई भी सेवा चुन लो इसमें से। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा अब जाकर चलो क्लास दो गीता का सबको, इतना गीता सुना तुमने, जाओ जाकर क्लास दो। अर्जुन तो वो करना चाहते थे, वो जंगल में जाकर वो जो कुछ तत्व ज्ञान सुना वो सब तत्व ज्ञान दूसरों को बांटें। भगवान ने कह भी दिया जो इस ज्ञान को दूसरों को बांटेगा वो मेरा सबसे प्रिय सेवक। तो मानो अर्जुन भगवान को कहें गीता सुनने के बाद, आपका सबसे प्रिय सेवक तो वो है जो इस गीता के ज्ञान को दूसरों को बांटता है। तो ये रहा गांडीव, ये रहा रथ, रथ तो खैर आप ही के हाथ में है, मैं चला। और बहुत क्लास सुनने के लिए बहुत से लोग उधर थे, 64 करोड़ लोग उपस्थित थे, महासत्संग कार्यक्रम हो सकता था, महा महा सत्संग कार्यक्रम हो सकता था कुरुक्षेत्र में। तो अर्जुन ने कौन सी सेवा चुनी जो भगवान को उस समय प्रसन्नता दे। हालांकि सभी सेवाएं भगवान को प्रसन्नता देती हैं, परंतु उस समय देश काल पात्र के अनुसार जो सेवा भगवान को प्रसन्नता देती है उसमें हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद उन्होंने कहा कि कई श्रील प्रभुपाद के शिष्य, अमेरिकी यूरोपियन शिष्य, वो कुछ साल बाद उन्होंने भक्ति छोड़ दी और फिर वो माया में गिर गए, परंतु प्रभुपाद हर समय उन्हें धन्यवाद देते थे कि एक ऐसा दिन था जब मुझे सबसे ज्यादा जब आवश्यकता थी सेवा की, तब ये लोग आके इन्होंने सेवा की। और प्रभुपाद कभी भूले नहीं, वो हर समय कहा करते थे, द अमेरिकन्स एंड द यूरोपियंस दे हेल्प मी व्हेन आई नीडेड द हेल्प मोस्ट। और इसलिए उसी को वास्तविक सेवा कहते हैं। तो भगवान अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि एक सेवक को किस प्रकार से अपनी सेवा निभानी चाहिए, कि जो मालिक चाहे। पांडव चाहते थे कि शांति दूत बनकर कोई जाए तो कौन जाएगा, तो भगवान ने कहा मैं जाऊंगा। पांडव चाहते थे कि अर्जुन की रक्षा होनी चाहिए क्योंकि भीष्म पितामह सामने हैं, तो भगवान ने कहा नहीं, मैं सारथी बनूंगा अर्जुन का, मैं रक्षा करूंगा अर्जुन की। और भगवान सारथी और सारथ्य और अर्जुन की रक्षा दोनों साथ साथ कर रहे थे। अब सारथी का यह काम नहीं है कि रथी की रक्षा करे, यदि रथी अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहा तो सारथी कहेगा किस प्रकार के रथी हो तुम। उल्टा रथी जो है उसे सारथी की रक्षा करनी होती है, परंतु यहां उल्टा हो रहा था कि भगवान सारथ्य अपना सारथ्य करते हुए अर्जुन का सारथ्य करते हुए अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। और ये जो गुण है भगवान का कि भगवान अपने भक्तों का सेवक किस प्रकार से बनते हैं, जैसे दामोदर लीला में उन्होंने सभी देवताओं को दिखा दिया, एवं संदर्शित यंग हरिणा भृत्यवश्यत स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे, कि भगवान ने इन सब सह ईश्वरों को बता दिया कि कैसे वो अपने भक्तों भृत्यवश्यत कि अपने भक्तों के वश में कैसे आते हैं यशोदा माई। और तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बहुत ही सुंदर वाक्य है, केवल यदि इतना हम समझ लें कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं, केवल इसे समझ लेने मात्र से मोक्ष निश्चित। और यही भक्ति की गुह्यता है, भगवान और भगवान के भक्त में जो आदान प्रदान है, यही भक्ति का रहस्य है। रहस्यम ये तद उत्तमम, भगवान ने कहा कि रहस्यों में भी जो उत्तम रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन। और वो कौन से अध्याय में उन्होंने कहा, नवे अध्याय में, जिसमें वो भक्ति के विषय में बता रहे हैं। इसलिए ये सारे जो श्लोक हैं जिसमें भगवान ने कहा है कि कैसे स्वयं भगवान को जानना है, तो उनको हमें तत्वतः जानना होगा। ये नहीं कि हाँ कृष्ण का नाम मैं लेता हूं और मैं जानता हूं उन्होंने कहाँ जन्म लिया, मैं गया हूं जन्म स्थान दर्शन किया मैंने और गोकुल में गया वहां पर उन्होंने लीला की, मैं जाकर आया हूं ब्रज में। भगवान कहते हैं तत्वतः भक्त्यामाम अभिजानाति यावन यश चाश्मी तत्वतः, कि जब तक हम भगवान को तत्वतः नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान के विषय में कुछ भी नहीं जान रहे। इसलिए यहां पर भगवान को तत्वतः जानने का अर्थ है कि भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का जो आदान प्रदान है भक्ति का, उसे जानना। और वो परीक्षित महाराज जानने के इच्छुक हैं। इसलिए परीक्षित महाराज हमें क्या सिखा रहे हैं कि जब हम श्रवण करें भगवान की लीलाओं का, जब हम दामोदर लीला सुनते हैं, तो ये नहीं कि बहुत अच्छी लगती है मुझे दामोदर लीला सुनना, यशोदा माई कैसे नटखट गोपाल को दंडित करती है। अधिकांश हम देखते कथाकार इन सब कथाओं को केवल मनोरंजन के रूप में सुनाते हैं, परंतु परीक्षित महाराज यहां मनोरंजन के रूप में नहीं सुन रहे, वो तत्वतः जानना चाहते हैं इन रिश्ते को। और ये बहुत कठिन है इस प्रकार का श्रवण, केवल भागवत क्लास में आकर बैठ जाना, ये तो एक चिड़िया भी उड़कर आके बैठ सकती है, इसे श्रवण नहीं कहते। और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग मंदिर में प्रवेश किया, देख रहे हैं कि कुछ चल रहा है, कुछ कथा चल रही, चलो बैठो, सभी बैठे हैं, चलो बैठ जाओ, उसे श्रवण नहीं कहते। श्रवण यहां परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं कि तत्वतः जानना कि भगवान में और पांडवों में जो रिश्ता भक्ति का था, उस रिश्ते को तत्वतः जानकर उस पर अमल करना। इस भौतिक संसार में दूसरों के रिश्तों के विषय में ज्यादातर कोई इतना रुचि नहीं लेता। अपने रिश्ते के विषय में सभी बहुत रुचि रखते हैं कि मेरा रिश्ता इसके साथ है। अरे तुम गुजराती हो, मैं भी गुजराती, तुम महाराष्ट्रियन, मैं भी महाराष्ट्रियन, वाह। मुंबई में हमारे एक भक्त, वो नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारत के, और वो हर समय जो दक्षिण भारतीय इनकी मजाक उड़ाया करते थे, और कभी साउथ इंडियन से उन्होंने कोई दोस्ती नहीं। वो गए ऑस्ट्रेलिया और वहां पर देखा कि केवल एक ही उनके साथ काम करने वाला, और वो था नायर, साउथ इंडियन मलयाली। तो अब इतनी दोस्ती उसके साथ हुई, क्यों? क्योंकि सजाति, हम एक ही जाति के हैं, हम भारतीय हैं, उसे पकड़ते हुए कि क्योंकि तुम भारत में जन्मे हो, तुम भारतीय भाषा बोलते हो, तुम भारतीय दिखते हो, और मैं भी ये सब हूं, इसलिए हमारा रिश्ता बना रहे। तो हम अपने रिश्ते के विषय में बहुत उत्सुक रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं मेरा रिश्ता कब होगा, किसके साथ। कौन वो होगा या कौन वो होगी जिसके साथ वो रिश्ता होगा, उत्सुक रहते हैं बहुत, और चिंतित रहते हैं कहीं ये टूट ना जाए, बहुत चिंतित रहते हैं कहीं ये रिश्ता फिर टूट ना जाए। परंतु हमें उत्सुक और चिंतित रहना चाहिए भगवान से संबंध या रिश्ता स्थापित करने हेतु, कि जब हम श्रवण कीर्तन के लिए बैठते हैं तो कितने उत्सुक रहते हैं कि भगवान से मेरा रिश्ता कब स्थापित होगा। कभी ऐसी उत्सुकता होती है कि जैसे ही मंगल आरती खत्म हो रही है कि अब भगवान से रिश्ता स्थापित होने वाला है, 6:15 बज रहे हैं, 6:45 से 7:30 तक भगवान के साथ सानिध्य मिलेगा। कभी उत्सुकता ऐसी हम अपने आप में देखते हैं, 6:45, फिर एक माला हुई, अरे केवल 5:50 हुई, ये घड़ी चल रही कि नहीं। कई बार लगता है घड़ी रुक गई, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, युगायतम निमेषेण गोविंद विरहेण में, कि वैसे ही हम घड़ी की तरफ देखते हैं कि युग बीत रहा है, ये घड़ी आगे क्यों नहीं बीत रही। एक माला हो गया, एक युग बीत गया। तो हमारी दशा ये है कि क्या उत्सुकता है भगवान से रिश्ता स्थापित करने की, कितनी उत्सुकता है हमारे। तो जब भागवत क्लास का अवसर मिलता है, श्रवण करने का अवसर मिलता है, तो कितनी उत्सुकता हमारे अंदर होती है कि अब एक और अवसर मिल रहा है भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने का। जैसे इस भौतिक संसार में जब स्त्री पुरुष उत्सुक रहते हैं रिश्ता स्थापित करने के लिए, या दोस्त भी, तो अवसर ढूंढते रहते हैं, हाँ बर्थडे आ रहा है तो अवसर मिलेगा रिश्ता स्थापित करने का, या दिवाली आ रही है, भगवान राम से कोई संबंध नहीं परंतु अब मौका मिलेगा एक दूसरे से मिलने का, कॉलेज शुरू हो रहा है अब मौका मिलेगा मिलने का। तो एक तो उत्सुकता होनी चाहिए भगवान से रिश्ता स्थापित करने के लिए, और चिंता होनी चाहिए कि कहीं ये रिश्ता जो थोड़ा बहुत थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कहीं वो टूट ना जाए। जैसे एक साधक को ज्यादा चिंता रहती है क्योंकि साधक का रिश्ता भगवान से बहुत पतले धागे से जुड़ा होता है। एक शुद्ध भक्त का रिश्ता भगवान से बड़े चेन की तरह जुड़ा होता है, परंतु फिर भी वो चिंता करता है कहीं टूट ना जाए वो चेन। अभी मान लो कि आपने किसी वस्तु को मोटा मोटा चेन से बांध रखा है, घर के दरवाजे को मोटे मोटे चेन से बांध कर बंद किया है, तो आप इतना चिंता नहीं करेंगे। जब बाहर भी जाओगे तो इतना चिंता नहीं करेंगे, आप जानते हो कि इतना मोटा चेन लगाया है, उसे तोड़ने में उसे चोर को इतना समय लगेगा कि मैं पहुंच जाऊंगा। परंतु यदि घर को केवल एक पतले से धागे से बांध कर कोई गया है तो चिंता करता रहेगा, क्योंकि उसे कोई भी तोड़ सकता है। तो इसलिए जब रिश्ता स्थापित होता है तो मोटा गांठ मारते हैं ना, ताकि उस समय तो चिंता न करे वो दोनों की, टूट जाएगा। परंतु कल्पना कीजिए कि वो रिश्ता स्थापित हुआ उस दिन विवाह के दिन, और केवल एक पतली सी सुतली, वो भी सुतली नहीं, वो धागा, ये जो धागा इस्तेमाल करते हैं ये भी थोड़ा मोटा होता है, उस धागे से बांधा जाए तो चिंता रहेगी कहीं वो टूट ना जाए, वो ज्यादा आगे चला जाएगा या मैं ज्यादा पीछे खींच जाऊंगा तो धागा टूट जाएगा, वो जब फेरे लगाते हैं ना तभी। तो हमारा जो रिश्ता भगवान से, हमारी साधना इतनी पतली है कि वो एकदम पतले धागे के समान है, और वो भी गांठ भी नहीं मारी हमने, केवल ऐसे कोने में रख दिया है। यदि उस पतले धागे को कोई गांठ भी मारे तो ठीक है, थोड़ा उसमें कुछ वजन होगा, परंतु हमने गांठ भी नहीं मारी है, वो धागे को, पतले धागे को ऐसे ही रख दिया, बेयरली टच कर रहा है वो भगवान को। तो कितनी चिंता होनी चाहिए कि ये रिश्ता टूट ना जाए, ये धागा जो मेरी साधना का इतना पतला धागा टूट ना जाए। और इसलिए ये चिंता करना श्रील प्रभुपाद ने भी सिखाया हमें। श्रील प्रभुपाद वो चिंता किया करते थे, और स्वयं के भगवान के संबंध के विषय में, ऐसा नहीं कि वो चिंता किया करते थे, हालांकि अपने शिष्यों के विषय में भी चिंता किया करते थे, परंतु कई बार श्रील प्रभुपाद उन्होंने चिंता व्यक्त की अपने स्वयं के भगवान के रिश्ते के संदर्भ में, कि भगवान के सामने प्रार्थना किया करते थे कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि कहीं मैं माया में न गिर जाऊं, आप बचाइए, चिंता। तो ये दो बहुत आवश्यक गुण होने चाहिए कि कितने हम उत्सुक हैं भगवान से रिश्ता स्थापित करने के लिए, और कितने हम चिंतित हैं जो भी थोड़ा बहुत रिश्ता स्थापित हुआ है कहीं वो टूट ना जाए। और यही हमें परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं कि परीक्षित महाराज वो चिंतित थे कि कहां पर हैं वो व्यक्ति जिनसे रिश्ता स्थापित हुआ था अपनी माता के गर्भ में, और फिर जब उन्हें श्राप मिला तो वो चिंता में पड़ गए कि वो रिश्ता कहीं टूट ना जाए, क्योंकि वो जी रहे थे भगवान की भक्ति करते हुए। तो वो चिंता इसलिए कर रहे थे कि यदि मुझे मृत्यु प्राप्त होगी तो भगवान की भक्ति छूट जाएगी। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव से यही कहा कि मैं, नरसिंह भगवान ने पूछा कि प्रहलाद तुम डर नहीं रहे, सभी डर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे केवल एक ही डर है भगवान, एक ही चिंता है, मेरी भौतिक इच्छाएं, कहीं मैं उनसे रिश्ता स्थापित न कर लूं। और हमारी चिंता क्या होती है, कहीं मेरी भौतिक इच्छाओं से मेरा रिश्ता न टूट जाए। प्रहलाद महाराज की चिंता है कहीं मेरी भौतिक इच्छाओं के साथ रिश्ता न जुड़ जाए, और हमारी चिंता कहीं मेरी भौतिक इच्छाओं के साथ मेरा रिश्ता न टूट जाए, वो चिंता हमारी। इसलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में वो भगवान से कहती है कि मेरे सारे बंधन छिंदी सब तोड़ दो भगवान आप, और वो भी स्नेह पाश, कौन सा पाश, पांडवों के साथ, अपने ही पुत्रों के साथ जो कि भगवान के नित्य पार्षद। कुंती महारानी कहती है इन सब से मेरा रिश्ता नाता तोड़ दो। इसलिए जब व्यक्ति अपने अंतिम समय में आता है, शास्त्रों के अनुसार उसे वन में चला जाना चाहिए ताकि वो अपने रिश्तेदारों के निकट न रहे। रिश्तेदारों के निकट रहेगा तो वो बंधन, वो स्नेह पाश फिर से याद आ जाएगा और फिर से फिर बनना पड़ेगा कोई सदस्य उस परिवार का अगले जन्म में। इसलिए भागवत के अनुसार जब मृत्यु निकट आती है तो व्यक्ति को अपने सभी रिश्तेदार इनसे दूर चले जाना चाहिए। और उल्टा होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो ये और निकट आते हैं और पूरे जिंदगी भर कभी नहीं आए होंगे, अब मरने वाला है व्यक्ति, चलो चलो चलो, तो सभी जा रहे हैं और सभी याद दिला रहे हैं, देखो देखो मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार हूं, मैं आया हूं, मैं तुम्हारा फूफा, मैं तुम्हारा मौसा, मैं तुम्हारा ये चाचा ताऊ, ये सब आ गए। और फिर वो उस समय उसे ये सारे बंधन तोड़ने हैं, तब जाकर ये सारे बंधन और दृढ़ बन रहे हैं उसके। इसलिए स्तो कृष्ण प्रभु, हमारे गुरु बंधु जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे तो राधानाथ महाराज उस समय वो उस कमरे में थे और समय आ गया था उनका, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी बंद कर दिया था क्योंकि उससे भी उनको पीड़ा हो रही थी। तो उस समय राधानाथ महाराज उन्होंने कहा कि इनकी जो पत्नी है और इनकी जो माता है और जो भी रिश्तेदार हैं उनको इस कमरे से बाहर ले जाओ। तो बाकी सब भक्त थोड़ा आश्चर्य किए कि इस समय तो इन्हें होना चाहिए। महाराज ने कहा अब अंतिम समय आ गया है इनका, केवल भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करने दो अपनी चेतना को। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इसके सामने नहीं आना चाहिए जो इसे भगवान श्री कृष्ण की भावना से दूर करे, डिस्ट्रैक्ट करे। तो जो भी ये सारे व्यक्ति या पदार्थ वहां से दूर किए गए, तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति और ऐसे वस्तुएं जो अंत समय में रोड़ा डालने वाले हैं हमारे भगवान पर हमारा मन केंद्रित करने के लिए, उसे धीरे धीरे दूर करते रहना चाहिए। और विशेष रूप से अंत समय, जैसे कुंती महारानी अपने उदाहरण से, हालांकि भक्त ही उनके सारे पुत्र, परंतु इनसे भी मेरा सारा रिश्ता तोड़ दीजिए ताकि मैं केवल आप पर अपना मन लगाऊं, केवल आप पर मैं केंद्रित करूं अपना मन। और यही परीक्षित महाराज ने भी किया, सुखदेव गोस्वामी ने भी। सुखदेव गोस्वामी रुके नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाने के बाद वो रुके नहीं कि अब परीक्षित महाराज मेरा अनुमोदन करेंगे, गुणगान करेंगे, क्या क्लास दिया आपने। कई बार हम क्लास देने के बाद थोड़ा रुकते हैं कि कोई भक्त आकर बोलेगा को अच्छा क्लास दिया आपने, परंतु सुखदेव गोस्वामी वो रुके नहीं, वो तुरंत निकल पड़े। और ये भी देखने के लिए नहीं कि मैंने जिसके लिए क्लास सुनाई इनके मुक्ति के लिए देखते हैं तक्षक कहां से आता है, क्या करता है, देखते हैं, देखते हैं तक्षक कैसा दिखता है। सुखदेव गोस्वामी निकल पड़े और वो इसलिए निकल पड़े कि सुखदेव गोस्वामी, कारण यह था कि सुखदेव गोस्वामी चाहते थे कि अब परीक्षित महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, इसलिए वो निकल पड़े। तो यही हमें इस सुंदर श्लोक से सीखना है कि हम भगवान से रिश्ता स्थापित करने के लिए कितने उत्सुक हैं और कितने चिंतित हैं कहीं वो रिश्ता टूट ना जाए। और परीक्षित महाराज इनकी तरह इनके पदचिन्हों पर चलते हुए कितना हम केंद्रित हो रहे हैं भगवान के ऊपर, और कुंती महारानी से विशेष शिक्षा लेते हुए कि सारे बंधनों को तोड़ते हुए कैसे हम केवल एक ही बंधन को रखें और वो भक्ति का बंधन, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का बंधन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।